حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه والله غني حميد الصلوات پڑھیں محمد علیہ عزیزان محترم موضوع سخن ہے کربلا اور معراج امر بمعروف اور نہی از منکر اس موضوع کے تحت گزشتہ مجالس عزا میں امر بمعروف اور نہی از منکر کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر قرآنی آیات اور روایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اس مفروضے کو مانتے ہوئے کہ خود انسان کا اچھا ہو جانا کمال نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سماج کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرے, اور یہ وظیفہ جو امر بمعروف اور نہی از منکر کا ہے, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ کی طرح یہ بھی فروع دین میں شامل ہے, اور یہ فریضہ بھی ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اسی فریضے کو عام کرنے کے لیے کربلا والوں نے قیام کیا اور انقلاب برپا کیا تاکہ دنیا والے اس انقلاب کا سہارا لے کر وہ بھی سماج میں اپنی توانائیوں کا خیال کرتے ہوئے قیام کریں, نیکیوں کو عام کریں اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں. برے لوگوں کو سزا دینے سے بہتر یہ ہے کہ سماج میں کے ہر گوشے میں نیکیوں کو عام کر دیا جائے, اچھے کو انعام دے دیا جائے تاکہ برا خود بخود سمجھ جائے کہ وہ برا ہے. اس طرح نیکیوں کو عام کر دیا جائے کہ برا فعل انجام دینے والا سماج میں شرمندگی کا احساس کرے. انقلاب کربلا کی یاد اس لیے بھی ضروری ہے کہ سماج میں گناہ کی قباحت باقی رہے, برائی کو لوگ برائی سمجھیں, کہیں برائی نیکیوں کا لباس نہ پہن لے. کربلا کا تذکرہ ضروری ہے, اس لیے بعد رسول 50 سال کی مدت میں نیکیوں پر برائیوں نے نیکیوں کا لباس پہن لیا تھا, اور اتنا لوگ دین سے دور ہو چکے تھے کہ وہ برائی کو انجام دینے میں فقر کا احساس کر رہے تھے. ایسے موقع پر جب دین بدل رہا ہوتا ہے, بدعتیں دین میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں, ایسے موقع پر ایک ایسے انسان کو قیام کرنا ضروری ہے جس کے دل میں دین کا درد پایا جاتا ہو. لوگ درد مٹانے کے لیے گولیوں کا استعمال کرتے ہیں, ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں, دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں, لیکن انقلاب کربلا نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ درد مٹانے کے لیے نہیں ہے بلکہ امت کا درد دل میں رکھنے کے لیے ہے. ایک لوگوں کے دلوں میں امت کا درد پیدا ہو, जैसे कल की मजलिस हमने इशारा किया, एक बाप के दिल में अपने बच्चे का दर्द हो, यह दर्द मिटे नहीं, इसलिए कि औलाद वालिदैन का फ्यूचर होते हैं, नतीजा होते हैं, फल होते हैं। तो परवरदिगार आलम ने इसी अम्र बेमारूफ और नहीं अज मुनकर को उजागर करने के लिए जो मिसाल पेश की है वो मिसाल हजरत लुकमान और हजरत लुकमान की नसीहतों को लोगों के सामने पेश किया है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इस निगाह से भी हम करबला को देख सकते हैं कि करबला सिर्फ वसीला नहीं है, करबला सिर्फ वसीला नहीं है, बल्कि करबला हमारी जिंदगी का मकसद भी है। बाज़ लोग समझते हैं करबला यानी वसीला, हमें कहीं तक पहुंचना है तो करबला के साथ हो जाए, करबला हमें पहुंचा देगी। बाज़ लोग तसव्वुर करते हैं, गलत तसव्वुर नहीं है, हमें जन्नत तक पहुंचना है, करबला को वसीला बना लो, करबला का दामन थाम लो, करबला ले जाएगी हमें जन्नत तक पहुंचा देगी। सिर्फ वसीला नहीं है, करबला हमारी जिंदगी का मकसद भी है। मुझे सिर्फ करबला का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाना नहीं है, मुझे करबला तक पहुंचना है। गौर कीजिएगा, मुझे करबला तक पहुंचना है, उस करबला तक पहुंचने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इबादतों के जरिए, नमाज के जरिए, रोजे के जरिए, जहाद के जरिए, होम्स और जकात की अदायगी के जरिए मुझे करबला तक पहुंचना है। करबला सिर्फ वसीला नहीं, करबला हमारी जिंदगी का मकसद भी है। बस लोग कहते हैं ये नमाज और रोजा भी वसाइल हैं, ये मकसद नहीं है। नमाज और रोजा भी वसीले हैं इबादत के, ये मकसद नहीं है। वसीले हैं अल्लाह के करीब होने के लिए, कुर्बत परवरदिगार मकसद है, लिकाए परवरदिगार मकसद है, नमाज वसीला है, करबला मकसद, मुझे करबला तक पहुंचना है और करबला मुझे अल्लाह तक पहुंचाएगी, इस एतबार से वसीला, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए मकसद है। उसके लिए मैं क्या करूं, अम्र बेमारूफ और नहीं अज मुनकर, जैसे हमने रिवायत आयतों की तरफ इशारा किया। एक बाप ने अपने बेटे को नसीहत की है, हमने ख्वाहिश की कल की मजलिस में इंशाल्लाह वालिदैन इस बात पर तवज्जो करेंगे। एक छोटा सा तालिब इल्म ने आपसे दरख्वास्त की है कि रोजाना आधा घंटा अपना अपने बच्चों के लिए दें और बच्चों से सवाल करें, बच्चों को नसीहत करें। और बच्चे भी याद रखें, बाप अगर नसीहत कर रहा है तो वो अपनी जिंदगी का निचोड़ तुम्हारे सामने रख रहा है, जिंदगी का निचोड़ है। 60 साल 70 साल 80 साल उसने जो मेहनत की है, उस मेहनत को तुम्हारे सामने रख रहा है, 2 मिनट में तुम उस मेहनत को ले सकते हो। इसी नहजुल बलागा में मौला कायनात ने जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को नसीहतें की, सिफारिश की, तो कहा बेटा हसन, तुम ये ना समझो कि तुम्हारा बाप अली 63 साल की उम्र वाला है। अली उस जात का नाम है जिसने अनबिया की छुपकर नुसरत की और खातिमुन नबीन की खुलकर नुसरत की है। यानी अली के पास जो तजुर्बात मौजूद हैं, सारे अनबिया के तजुर्बात मौजूद हैं। उनकी उसकी बात को सुनो। एक बाप जब नसीहत करता है, एक माँ जो नसीहत कर रही है अपने बच्चे को, इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी का निचोड़ उसके सामने रख रहे हैं। इल्म का नतीजा नसीहत है, हिकमत का नतीजा नसीहत है। परवरदिगार ने कहा हमने लुकमान को हिकमत दी है, समझ दी है, फहम अता किया है, तो फहम का नतीजा यह है कि हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करें। नेकियां बांटने से बाकी रहती हैं, छोड़ देने से खत्म हो जाती हैं। इद काल लुकमान अले इब्ने, कल की मजलिस से यहां से मैं आप अपने मौजू को आगे बढ़ा रहा हूं। इद काल लुकमान अले इब्ने ही, हिकमत अता की परवरदिगार आलम ने, तो लुकमान ने सबसे पहला जो काम किया, अपने बच्चे को अपना साथ लेने की कोशिश की, बच्चा मेरे साथ रहे, इसलिए कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा माहौल का नहीं है कि माहौल के साथ हो जाए, बस इससे खुलकर बयान कर नहीं सकता, मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। इद काल लुकमान ले इब्ने ही, अपने बेटे से कहा हुआ याएदहु, क्या कहा था, पहली नसीहत जो की थी हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कि बेटा तौहीद का दामन तुम्हारे हाथ से छूटने ना पाए। क्यों? इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, तौहीद, अल्लाह याद रहे। जिसे अल्लाह याद रहता है वो दुनिया की किसी भी मुसीबत से घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है। दश्ते करवला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारी कुर्बानियां मैं देखने के लिए तैयार हूं। क्यों? वो मुझे देख रहा है। वो अगर चूंकि मुझे देख रहा है, सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हूं। वो अगर याद रहे तो इंसान के लिए कुर्बानियां देना मुश्किल नहीं है, आसान हो जाती है। पहली नसीहत तौहीद, मैं ना दोहराऊं, ज्यादा रिपीटेशन ना हो जाए। और मैंने कहा था कि दरमियान में रुक रहा हूं इसलिए कि यहां पर जो नसीहत की हजरत लुकमान ने वालिदैन के एहतराम के सिलसिले में। दूसरी नसीहत, आठ आयतें सूरह लुकमान की, अगर मौका मिले तो आज रात या कल आप पढ़िए ये आठ आयतें और उसका तर्जुमा भी पढ़िएगा। आठ आयतों में हजरत लुकमान ने 12 नसीहतें की हैं। आठ आयतें 12 नसीहतें, 12 नसीहतों में 9 नसीहतें पॉजिटिव हैं, 3 नसीहतें नहीं अज मुनकर नेगेटिव हैं, और इसमें 7 दलीलें मौजूद हैं। 8 आयतें, 12 नसीहतें, 9 अमर बे मारूफ के, 3 नहीं अज मुनकर के, और 7 दलीलें मौजूद हैं। अगर कोई इन 8 आयतों को हिफ्ज कर ले या उन नसीहतों को याद रखे, काफी है उसकी जिंदगी के लिए। पहली नसीहत क्या की? तौहीद। दूसरी नसीहत, वो वसैनल इंसाना बेवालदै। हजरत लुकमान ने नसीहत की, बेटा मां बाप का एहतराम करना, मां बाप मेरे घर में मेरे लिए मजाजी खुदा है। मुश्किल हो गया लफ्ज, मजाजी खुदा है। मैं वजूद में आया हूं इन्हीं मां बाप के वसीले से, अल्लाह ने इनको वसीला करार दिया ताकि मैं वजूद में आऊं। मैं वजूद में आया उनके वसीले से, तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं उनका एहतराम करूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि दीन यानी एहतराम, दीन से रेस्पेक्ट को निकाल लिया जाए, दीन में कोई चीज बाकी नहीं रहती। दीन से रेस्पेक्ट और एहतराम को निकाल दिया जाए, दीन में कोई चीज बाकी नहीं है। तौहीद अल्लाह का एहतराम, नबुवत मोहम्मद का एहतराम, इमामत अली का एहतराम, आजादारी हुसैन का एहतराम। एहतराम नहीं है तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा दीन में। हम जियारतों पर क्यों जाते हैं? मकान का एहतराम। शबे कद्र क्यों जागते हैं? जमान का एहतराम। अगर इससे हट जाए तो कोई चीज बाकी नहीं रहती। देखिए सारे दीन के अहकाम उठाकर देखिए, एहतराम एहतराम। सूरह हुजरात की इब्तदाई कई आयतों में परवरदिगार आलम ने कहा, अरे मुसलमानों, नबी का एहतराम करना सीखो। अगर जर्रा बराबर एहतराम में कमी आ गई तो तुम्हारे आमाल बातिल हो जाएंगे, तुम्हारे आमाल बातिल हो जाएंगे। कैसा एहतराम करें? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ऐ साहिबान ईमान, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद न करो। वो तुम्हारा लीडर है, वो तुम्हारा रहबर है, बुलंद न करो। वला तजहरू लहू बिल कौले का जहर बादकुम बादा। ऐसे आवाज ना दो रसूल को जैसे तुम दोस्तों को बुलाते हो। बाजारा बातें थे, रसूल खुदा के कमरे के बाहर खड़े हो जाता है, मोहम्मद आइए हम आपसे बात करना चाहते। अल्लाह ने कहा अभी ये कुछ तो कुछ लहबर का लिहाज होना चाहिए, कुछ तो कुछ। देखिए कितनी कितना प्यार था अल्लाह को इस नबी से। एतराज मोहम्मद पर होता है, जवाब अल्लाह देता है। रसूल की इज्जत का तरीका अल्लाह सिखा रहा है, इसलिए कि जिस कौम में मोहम्मद के एहतराम का सलीका आ जाता है उस कौम को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। जी? रहबर के एहतराम का सलीका आ जाए उस कौम को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। ला तरफ़ु अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू कल जहर बादकुम बादा, क्या हो जाएगा एक नबी की बेहतरामी में, क्या हो जाएगा नतीजा, अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, एक बेहतरामी के नतीजे में तुम्हारे सारे आमाल बातिल हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बेहतरामी में आमाल बातिल हो जाते हैं, कुरान कह रहा है हाँ, गुज़श्ता सारी नेकियां एक बेहतरामी के नतीजे में बर्बाद हो जाती, रसूल की बेहतरामी। दीन यानी एहतराम, एहतराम से हटेंगे तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। नबुवत का एहतराम, तौहीद का एहतराम, नबुवत का एहतराम, इमामत का एहतराम, खाना काबा का एहतराम, रोजाए मुकद्दस का एहतराम, जमान का एहतराम, मकान का एहतराम, लफ्जों को बदल दूं जो सो रहे हैं उनको जगाने के लिए भी कुछ कहना पड़ता है, निस्बत का एहतराम, निस्बत के निस्बत का एहतराम, निस्बत के निस्बत के निस्बत का एहतराम। समझ गए नहीं समझिए, ये मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया, निस्बत का एहतराम है। क्यों काबे का एहतराम करें, मैं काबे की दलील दे दूं, जब करबला की दलील देते हैं तो लोग सवालिया निशान लगा देते हैं, क्यों? चलिए हम मुसलमानों से पूछते हैं क्यों काबे का एहतराम, काबे का एहतराम क्यों? इसलिए कि काबा मंसूब है अल्लाह के नाम से, चूंकि काबा हो गया अल्लाह का घर, ये का और की सबब बन जाते हैं एहतराम के लिए। अल्लाह का घर, चूंकि अल्लाह के नाम से यह घर मंसूब हो गया, घर है पत्थरों का, कोई आर्किटेक्चरल बिल्डिंग नहीं है खूबसूरत हो देखने के लिए लोग जाने, सिया काले पत्थर हैं, कुछ भी है ही नहीं है। फिर क्यों इसकी एहतराम करें, चूंकि यह मंसूब हो गया है अल्लाह के नाम से, चूंकि तौहीद से मंसूब हो गया, इस घर का एहतराम करो, काबे के गिलाफ का एहतराम करो, कोई आग नहीं लगा सकता, कोई गंदगी नहीं लगा सकता, गिलाफ का क्यों एहतराम करें भी, चूंकि ये काबे से मंसूब हो गया, घर का एहतराम करो अल्लाह से मंसूब हो गया, काबे के गिलाफ का एहतराम करो ये काबे से मंसूब हो गया, जो काबे का तवाफ करके आ रहा है हजरत हाजी उसका एहतराम करो। अरे क्यों? इसलिए कि ये काबे का तवाफ करके आ रहा है, ये जुज़े काबा तो नहीं है, ये निस्बत के निस्बत के निस्बत का एहतराम हो जाता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, निस्बत के निस्बत के निस्बत का एहतराम, काबा अल्लाह के नाम से मंसूब, गिलाफ काबे से मंसूब, हाजी काबे का तवाफ करके आ रहा है। निस्बतें अजमतें अता करती हैं, निस्बतें अजमतें अता करती हैं, मंसूब हो जाना कमाल है। इसलिए बुलंद अशखास से मंसूब हो जाओ, जब मंसूब हो जाओगे तो कमाल खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। दीन यानी एहतराम, एहतराम जमान, एहतराम मकान। कुरान मजीद में आयतें में हर एक की आयत पढ़ नहीं सकते, मेरा मौजू नहीं है, हर एक के लिए आयतें मौजूद है, क्यों मकान का एहतराम करें, क्यों जका जमान का एहतराम करें, क्यों अनबिया का एहतराम करें, एक पैगंबर इस्लाम के एहतराम के लिए मैंने आयत नमूने के तौर पर पेश की है। तो वालिदैन का भी एहतराम है, ये नहीं कहा हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कि बेटा वालिदैन मोमिन है तो एहतराम करो, नहीं, मुसलमान है तो एहतराम करो, नहीं, कहा वो वसैनल इंसान, इंसान के लिए जरूरी है कि वह अपने वालिदैन का एहतराम करे, चाहे वालिदैन मोमिन हो या काफिर, हत्ता रिवायतें कहती हैं जिंदा हो या मुर्दा, अमीर हो या फकीर। ये तसव्वुर ना करो वालिदैन ने कुछ छोड़ गए हैं वालिदैन तो एहतराम करेंगे, कुछ नहीं छोड़ा तो एहतराम नहीं करेंगे। वालिदैन की मोहब्बत को दौलत में तोलना सही नहीं है, उनका एहतराम करना फर्ज है बच्चों पर, जिंदा हो या मुर्दा, मोमिन हो या काफिर। या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान हो चुका हूं, मेरे वालिदैन काफिर हैं, क्या करूं? पैगंबर इस्लाम ने कहा पहले जितना एहतराम करते थे अपने एहतराम को और बढ़ा दो। ये इस्लामी उसूल है मेरे अजीज, इस्लामी अहकाम अगर दुश्मनों को पता चल जाए तो इस्लाम के सामने सजदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है पहुंचाना उन तक बात को। अगर मां बाप काफिर है तो खिदमत को और बढ़ा दो। क्या या रसूल अल्लाह क्यों खिदमत को और बढ़ा दूं, क्यों ज्यादा खिदमत करूं? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इसलिए कि अगर वो पूछेंगे खिदमत तुम्हारी क्यों बढ़ गई है तो बता दो इस्लाम का हुक्म यह है कि वो वालिदैन का एहतराम करें, चाहे मोमिन हो या काफिर हो, ताकि वो अखलाक के जरिए से दीन तक पहुंचे। दीन के जरिए से अखलाक तक पहुंचना मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाता है, जुमला जब निकल जाता तो फिर वजाहत करनी पड़ती है। दीन के जरिए से अखलाक तक पहुंचना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। हवाई जहाज में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, गाड़ी में बैठिए, कोई आपके पहलू में बैठा हुआ है, मुसलमान कह दीजिए, मोमिन कह दीजिए, वहीं से हालात चेहरा बिगड़ना शुरू हो जाता है। मजहब के नाम पर इत्तेहाद आज की दुनिया में मुमकिन नहीं है। मजहब के नाम पर इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। हां, अमली जरूरत पर इत्तेहाद मुमकिन है। अखलाक के नाम पर इत्तेहाद मुमकिन है। दीन से अखलाक तक नहीं जा सकते, मुश्किल हो जाता है, लेकिन हां पैगंबर ने बताया अखलाक के जरिए से दीन तक पहुंच सकते हो। तुम्हारा उठना अच्छा हो उसके साथ, बैठना अच्छा हो, गुफ्तगु अच्छी हो, बात करने का सलीका अच्छा हो, शेयर करो, अपने खाने में उसको बुलाओ और उसके घर जाओ, उसे अपने घर बुलाओ, जब अखलाक देखेगा तो दीन पूछेगा, तब असर होगा। 40 साल पैगंबर इस्लाम ने मनवाया कि मैं सादिक हूं, मैं अमीन हूं। जब अखलाक को आजमा लिया, अखलाक का कलमा पढ़वा लिया, तब कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अखलाक से दीन तक आओ तो दीन मजबूत रहता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी, गुफ्तगू इधर उधर ना चली जाए हमारी। क्या कहा? मां बाप का एहतराम करो, मोमिन हो या काफिर। वो वसाइनल इंसान बेवालिदै, लेकिन वालिदैन में जिसकी मेहनत ज्यादा उसका तज़किरा अलग से होना चाहिए। कम्युनिटी में सब मेंबर एकसा हैं, सारे लोग एकसा हैं, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत ज्यादा की है उनका अजर कुछ ज्यादा होता है, उनका नाम कुछ अलग से लिया जाता है। जब नाम अलग लेना जरूरी है, क्यों? मेहनत ज्यादा की है, तलाश ज्यादा की है। वो वसैन अल इंसान अब वालदे हमलत उम्मू वहनन अला वहन वो फिसालहू फी आमैन। हां, मां ने थोड़ी मेहनत ज्यादा की है, दर्द को बर्दाश्त किया, 2 साल तक खून जिगर को पिलाया, तो उसका एहतराम अलग होना चाहिए। आप तो नहीं कहेंगे इस पर सुभान अल्लाह, क्यों मेहनत थोड़ी ज्यादा हुई? खुदा ने कहा कि नहीं, अलग से तस्करा किया। वो हमलत हूं उम्मू, मां ने उठाया तुम्हें, दर्द को बर्दाश्त किया। वो फिसाल उफी आमैन, 2 साल तक खून जिगर पिलाया, दूध पिलाया है, दूध खरीद के लाया दिलाया दिया नहीं है। वो फिसाल उफी आमैन, उसका एहतराम अलग से होना चाहिए। या रसूलुल्लाह क्या करूं, नेकी करना चाहता हूं, व्हाट कैन आई डू, नेकी करना चाहता हूं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मां की खिदमत कर। दूसरी मरतबा आया, या रसूलल्लाह नेकी करना चाहता हूं, पैगंबर इस्लाम ने कहा मां की खिदमत कर। तीसरी मरतबा आया, या रसूलल्लाह नेकी करना चाहता हूं, क्या करूं, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मां की खिदमत कर। चौथी मरतबा आया, या रसूलल्लाह नेकी करना चाहता हूं, क्या करूं, तब पैगंबर इस्लाम ने कहा बाप की खिदमत कर। तीनों मेडल मां के नाम, क्यों? दर्द को बर्दाश्त किया है। मेरी मां बहनें सुन रही हैं तो गौर से सुने, वो चाहें तो बच्चों की जिंदगियों को बदल सकती हैं। घर का माहौल अगर मजहबी बनाना है तो मां के हाथ में, एक मां के हाथ में। तो परवरदिगार ने कहा एहतराम करो, मां का अलग से एहतराम। उसके बाद फौरन परवरदिगार ने कहा अनिश्कुर ली वाले वाले देख, अपने शुक्र के साथ मां बाप के शुक्र को परवरदिगार आलम ने जोड़ दिया। तो मेरा शुक्र अदा करो, वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। जब दो सिफतें जुड़ जाती हैं, जब तक वालिदैन का शुक्रिया अदा नहीं होता उस वक्त तक परवरदिगार का शुक्रिया भी अदा नहीं हो सकता। वश्कुर ली वले वालिदैक, अपना मेरा शुक्रिया अदा करो, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। हो सकता है इंसान सोचे मैं अदा नहीं करूंगा क्या होगा, फौरन जहन में आकर नहीं हम खिदमत नहीं करेंगे, पैदा कर दिया तो क्या कमाल कर दिया। फौरन परवरदिगार आलम ने कहा कानून, मैंने कहा था सात कानून परवरदिगार ने बताए हैं, पहले शुक्र का कानून, दूसरे जुल्म का कानून कि शिर्क जुल्म है, तीसरा कानून वह इलैयल मसीर, याद रहे तुम सबको लौट कर मेरी बारगाह में आना है। जिसे अपनी बाजगश्त याद रहती है वह शुक्र के लिए जरूर सजदा करे। अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। पहली नसीहत तौहीद, दूसरी नसीहत की शुक्र वालिदैन का एहतराम, और उसके बाद दूसरी तीसरी आयत करीमा है अगर माँ बाप कहें कि तुम वाजिबात को छोड़ दो, माँ बाप की बात मानना जरूरी नहीं है, माँ बाप की इताअत करो, माँ बाप के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करो। अगर माँ बाप कहें वाजिबात को छोड़ दो, हुक्म खुदा और हुक्म माँ दोनों टकराए तो खुदा का हुक्म पहले है, माँ बाप का हुक्म बाद में। अभी बच्चा है, रोजा रखेगा तो कमजोर हो जाएगा, परवरदिगार कह रहा है रखो, माँ बाप कह रहे हैं मत रखो। यहां पर माँ बाप की बात मानना जरूरी नहीं है, अल्लाह की बात मानना जरूरी। जब दो चीजें टकराती हैं आपस में तो अल्लाह का हुक्म पहले, माँ बाप का हुक्म बाद। हाँ, जहां तक मुस्तहबात की बात है, अगर तुम्हारे मुस्तहब रोजे से मां बाप को तकलीफ पहुंच रही है छोड़ दो। मुस्तहबात का ताल्लुक है, तुम्हारे मुस्तहब रोजे से बाप को तकलीफ पहुंच रही है मां को छोड़ दो। लेकिन जहां तक वाजिबात का तस्किरा है, मां बाप का हुक्म और अल्लाह का हुक्म आपस में टकराए तो हुक्म परवरदिगार पहले है। पर क्या करूं, लड़ लूं झगड़ूं? अल्लाह कुरान मजीद की लताफत देखिएगा, वो साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा। अब दीन में मुखालिफत करो, जब बात दुनिया की आ जाए फिर सर झुका दो। नमाज के लिए मां बाप ने कहा मत पढ़ो, नमाज पढ़ो। नजरियाती इख्तिलाफ, जुमला सुन लीजिएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अगर आप समझ गए या मैं समझा पाया, नजरियाती इख्तिलाफ जाती इख्तिलाफ का सबब न बने। नजरियाती इख्तिलाफ जाती इख्तिलाफ का सबब न बने। आपका नजरिया अलग, आपके घर वालों का नजरिया अलग, आपका तरीका अलग, आपके घर वालों का तरीका अलग, दो तरीके अलग हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दस्तरखान पर बैठ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। परवरदिगार आलम ने बच्चों से कहा मां बाप का एहतराम करो, अगर दीन के मसले में दोनों में झगड़ा हो जाए, मां बाप कहे नमाज ना पढ़ो, अल्लाह कह रहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ लो, लेकिन दस्तरखान अलग ना होने पाए, एक ही दस्तरखान पे बैठो। इसलिए कि जब इख्तिलाफ नजरिया आती है तो उसे जाती इख्तिलाफ का जरिया मत बनाओ। अगर यही चीज कम्युनिटी में आ जाए तो कभी मोमिनीन में इख्तिलाफ कभी ना होने पाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इत्तेहाद की बुनियाद और लुत्फ भी इत्तेहाद में वही है जहां कुछ नजरियाती इख्तिलाफ भी पाया जाता हो। जी आजकल जो इमारतें बनाई जा रही हैं उनको कर्व्स दिए जा रहे हैं, उनको टेढ़ा किया जा रहा है, इख्तिलाफ के का नतीजा है। अगर इख्तिलाफ ना हो तो दुनिया में हुस्न ही नहीं पाया जाता, थोड़ा बहुत तो इख्तिलाफ होना चाहिए। लेकिन उसका सबब यह नहीं कि हम दोनों लड़ जाएं। जहन अलग है, फिक्र अलग है, तसव्वुर अलग है, ख्याल अलग है, तो अलग अलग ख्यालात की बातें होता होनी चाहिए ताकि किसी एक मकसद को आगे बढ़ाने के लिए, मकसद में इख्तिलाफ ना हो, मकसद तक पहुंचने के रास्ते में इख्तिलाफ मुमकिन है। कौन किस तरफ से आ रहा है सेंटर, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आना है उसे सेंटर। एक चमन में सारे फूल एक जैसे हो जाएं, दिल उकता जाता है। फूल रंग बरंग के हों लेकिन एक ही चमन में हों, एक गुलदस्ते के फूल एक ही रंग के हो जाएं, गुलदस्ता घर में रखने के लिए दिल नहीं चाहता। रंग बरंग के फूल हो लेकिन गुलदस्ते के एक ही डोरी से जुड़े हों। एक घर में मुमकिन है इख्तलाफ नजरियात हो, लेकिन वह साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा। परवरदिगार तेरा शुक्र है, कितना खूबसूरत आयत करीमा का तीसरा कानून है, नजरियाती इख्तलाफ के बावजूद एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाना इंसानियत की पहचान है। कि दोनों झगड़ा किया दीन में, लेकिन मां बाप के साथ दुनियावी उमूर में मुत्तहिद हो जाओ। दीन में इख्तलाफ है तो दुनियावी उमूर में उनका एहतराम करो, सर झुका दो। कैसे एहतराम करो, तफसील तलब मौजू है। दूसरी नसीहत जो हजरत लुकमान ने की कि माँ बाप का एहतराम करो। तीसरी नसीहत जो कल की मजलिस में हमने इशारा किया, कयामत का ख्याल रहे। चौथी नसीहत, नमाज कायम करो। पांचवी नसीहत, अम्र बे मारूफ। छठी नसीहत, नहीं अज मुनकर। सातवीं नसीहत, सब्र। आठवीं नसीहत, या बुनैया ला तुसईर हद्दका लिन्नास। दीन की नसीहत हो गई, तौहीद की, कयामत की, वालदैन की, नमाज की, अम्र बे मारूफ, नहीं अज मुनकर। अब आओ सोसाइटी में दाखिल हो जाओ, बेटा बेटा सोसाइटी में दाखिल हो जाओ। पहला हुक्म सोसाइटी में दाखिल होने का ये कि किसी से समाज में अपने मुंह को मत मोड़ो। वला तुसईर हद्दका लिन्नास, अपने चेहरे को मोड़कर समाज में तुम जिंदगी नहीं गुजार सकते। चेहरे को हंसता खिलता हशाश बशाश रखो। लोग चाहें कि तुमसे मिलें, तुम्हें देख कर न भागें। अल्लाह आयतुल्लाह बहजत कहते हैं, बाहर का गुस्सा घर में ना ले जाओ, घर का झगड़ा समाज में मत ले आओ। सारा काम यही होता ना, जहां जो काम है वो काम खत्म कर दो। उनके शागिर्द ने कहा, आगा मैं जब भी घर में जाता हूं तो झगड़ा होता है। तो अतला भैजत ने पूछा, क्या करते हो? क्या घर में मैं काम करता हूं? अतला भैजत ने कहा, गलत करते हो। आधा आठ घंटे बाहर काम करके आओ, फिर घर में भी काम करने लगोगे तो फिर घर वाले किसके लिए हैं? बाहर का काम बाहर करो, घर का काम घर में। बाहर का गुस्सा घर में मत ले आओ और घर के झगड़े बाहर मत ले आओ। तुम्हारी जिंदगी हस्ती खेलती रहे, तुम जिंदगी को जिंदगी के तौर पर इस्तेमाल करो, बोझ के तौर पर नहीं। अपने अंदर के, चाहे किसी से झगड़ा हो, किसी की निस्बत दुश्मनी हो, अपने अंदर के शैतान को चेहरे पर लाने की कोशिश न करो, चेहरा हंसता रहे। मोमिन की निशानी यह है कि चेहरे पर खुशी होगी चाहे दिल में गम क्यों ना हो। अहले बैत ने बहुत आसान तरीके हमें बता दिए, लोगों से मुंह मोड़कर मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं पैदा नहीं हुआ हूं अकेला जिंदगी गुजारने के लिए, मैं पैदा हुआ हूं समाजी जिंदगी गुजारने के लिए। मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं जंगल में जाऊं अकेला रह जाऊं मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। किसी बच्चे को आप जंगल में छोड़ दीजिए, वो बोलना भी नहीं सीखेगा। क्यों? इसलिए वो पैदा नहीं हुआ कि अकेला जिंदगी गुजारे, वो पैदा हुआ है समाज में जिंदगी गुजार। क्या करूं, कोई उसूल है? मौला कायनात ने नहजुल बलागा में फरमाया, खालेतुन नास मुखालेततन इन इश्तुम हन्नु इलैकुम व इन मित्तुम बकाउ अलैकुम। लोगों में ऐसे घुल मिल के रहो, अगर जिंदा रहो तो लोग मिलने की तमन्ना करें, मर जाओ तो लोग आंसू बहाने लगे। बस ये क्रिटेरिया बताया मौला कायनात ने, ये बता दिया कि इस तरह जिंदगी गुजारो, अगर जिंदा रहो तो लोग मिलने की तमन्ना करें। वो आया क्यों नहीं है आज बज़्म में? क्यों नहीं आया? वला तुसईर, देखिए हजरत लुकमान कह रहे अपने बेटे को, वला तुसईर हद्दका लिन्नास, अपने चेहरे को लोगों से मत मोड़ो, उनकी तवज्जोहात को मरकूज करो। जिस बज्म में अहले बैत हमारे आते थे, उस बज्म के जितने लोग होते सब चाहने लगते थे, सब चाहने लगते थे। शाम से एक आदमी जो दुश्मन इमाम था आया आठवें इमाम के दर्स में बैठकर दर्स हासिल कर रहा है। लोगों ने पूछा, तू तो दुश्मन है इमाम का, फिर दर्स में क्यों आ गया? वो कहता, मैं मुझे इमाम का चेहरा बहुत पसंद है, मुझे इमाम का चेहरा बहुत पसंद है। ये कमाल का कैसे हासिल होता है? जब इंसान ईमान के उन मराहिल को तय करता है, बहुत पसंद है। मैंने शायद गुज़श्ता साल ये जुमला इशारा किया था, आज भी इशारा कर दूं, जापानी मुहावरा है कि जिसे हंसना नहीं आता आज वो दुकान मत खोले। जिसे मुस्कुराना नहीं आता आज वो दुकान मत खोलो। जब तक दिलों पे कब्जा नहीं होता तिजारत नहीं होती है। तिजारत के लिए दिलों पर कब्जा करना जरूरी है तो फिर मोहब्बत के लिए तो और सफर मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल सफर हो जाता है। समाज में झगड़े होते हैं, समाज में मुमकिन है कि लोगों के दरमियान लड़ाइयां हो, लेकिन वो सारी चीजें दिल में मत रखो। इंतकाम का जज्बा इंसान की हयात को कम कर देता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते चार किस्म के लोगों को कभी नींद नहीं आती, चार किस्म के लोगों को कभी नींद नहीं आती। एक, जिसकी गर्दन पर बहुत बड़ा कर्जा हो उसे नींद नहीं आती। कुर्बान जाए पैगंबर इस्लाम की हदीस पर, कर्जे का बोझ हो कंधे पर वैसे इंसान को नींद नहीं आती। दो, वो इंसान जो सोचता है कि खर्च करने से दीन पर मेरा माल जाया हो जाता है और दूसरे जब खर्च करते हैं परेशान हो जाता है, ऐसे इंसान को नींद नहीं आती। यानी दूसरे लफ्जों में कहूं, जो अकलन वो मालन वो फिक्रन बखील होता है वैसे इंसान को नींद नहीं आती। कुछ लोग होते हैं जो खुद बखील होते हैं, खुद खर्च नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं दूसरों को खर्च करता हुआ भी नहीं देख सकते। अरे उसने क्यों, अरे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी थोड़ी है भी। वो लोग, उन लोगों को भी नींद नहीं आती। एक, जिनकी गर्दन पर पुश्त पर कर्जा है ऐसे लोगों को नींद नहीं आती। एक लोग, वो लोग जो अकलन वो मालन बकील होते ऐसे लोगों को भी नींद नहीं आती। तीसरे, वो लोग जो जो इंतकाम लेना चाहते हैं किसी से, ऐसे लोगों को भी नींद नहीं आती। और वो चौथी किस्म, वो लोग जिनका तसव्वुर अल्लाह और कयामत से दूर हो जाता है ऐसे लोगों को भी नींद नहीं आती। नहीं, जमीर झिझोड़ता है, झिझोड़ता है जमीर। मेरे पास वक्त नहीं है, कल थोड़ी देर हो गई तो कुछ नौजवान ने कहा हमें जल्दी जाना है, माफी चाहता हूं, किस तफसील में मैं जाऊं। चार किस्म के लोगों को नींद नहीं आती है। जो इंतकाम का जज्बा जिसे जिसके अंदर पाया जाता है उसे नींद नहीं आती है। तो हयात, नींद ना आने का मतलब यह हयात घट जाती है। तो क्या किया जाए? दो रोजा जिंदगी को इस तरह कहीं बर्बाद ना करे कि अपनी हयात को मैं दूसरों के लिए खर्च करूं। बचती हयात इतनी है मैं अपने लिए खर्च करूं। इमाम अबू हनीफा से पूछा किसी ने, तुम्हारी हयात कितनी है? गौर कीजिएगा मेरे अजीज, इंशाल्लाह ये तोहफा है आज की मजलिस का, तुम्हारी उम्र क्या है? इमाम अबू हनीफा ने कहा 2 साल थी, 60 साल उम्र थी, 60 साल उन्होंने कहा 2 साल है। ताज्जुब से पूछा, तुम्हारी उम्र 2 साल लग हो, 60 साल के बता रहे हो 2 साल? तो इमाम अबू हनीफा ने कहा, वही 2 साल मेरी जिंदगी के मेरे पास बचे हैं जिन 2 साल को मैंने छठे इमाम इमाम जाफर सादिक की खिदमत में खर्च किए हैं। कितनी उम्र है? 2 साल। क्यों? इमाम के हुजूर में मैंने जो 2 साल खर्च किए वही मेरी उम्र है, बकिया उम्र गई जाया। आज हमारे 24 घंटे में हमारे कितने घंटे हमारे हैं? वही 1 घंटा जो हमने हुसैन के लिए खर्च किया है। और ये खर्च भी खर्च में हिसाब नहीं आएगा। आपको मालूम होना चाहिए, बाज़ रिवायतें ऐसी हैं, जितना वक्त हम फजाइल व मसाइब अहले बैत में खर्च करते हैं वो वक्त हमारी जिंदगी में कैलकुलेट नहीं होता है। यानी एक्स्ट्रा हयात हमें मिलती है। हम सोचते वक्त खर्च कर रहे हैं, इमाम फरमा रहे वक्त तुम कमा रहे हो। तो जुमला कहने दीजिए, मजलिस में शरीक होना वक्त के खर्च होने की दलील नहीं है, वक्त के कमाने की दलील है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये खर्च नहीं होता है, टाइम पास का जरिया नहीं है, ये इंसान वक्त को हासिल कर रहा है। यही 1 घंटा हमारा 24 घंटे में है, इसलिए कि हमने हुसैन के नाम पे दे दिया है। और हुसैन किसी का कर्ज अपने गर्दन पे लेते नहीं है, सबको चुका देते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हमें सोचें कि अपने जिंदगी के मकसद को कहां तक ले जाए। इंतकाम का जज्बा दिल में रहे, नींद नहीं आएगी। क्या करूं मैं? माफ करूं, बड़ा मुश्किल मरहला है। माफ करूं, यही सबसे बड़ा मुश्किल मरहला है कि मैं माफ करूं। अगर माफ नहीं करूंगा तो यह जज्बा इंतकाम मेरे दिल में बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इतना बढ़ता चला जाएगा कि एक दुश्मनी के लिए मैंने सारी जिंदगी अपनी खर्च कर दी। कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए मैं दरमियान में गुफ्तगू कर रहा हूं। जोश मलियाबादी ने कहा, जो सो रहे हैं उनको जगाने के लिए, झुकता है फितना अफो तरहम के सामने। जो तुम्हारे सामने खड़े होकर चिल्लाता है तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने परसों की मजलिस में कहा था बोलो, आज कह रहा हूं चुप हो जाइए। जो बुरा काम अंजाम दे रहा है उसके मुकाबले में तो आपको बोलना चाहिए। कभी एक आदमी चिल्लाता उसके मुकाबले में क्या करो, चुप हो जाओ। उसके पास देखिए, जो गुस्से की हालत में बड़बड़ाता है उसके पास खजाना बहुत मुख्तसर होता है। गुस्से में जो चिल्लाता है खजाना उसके पास लफ्जों का कम होता है। इसलिए कि आदमी जब सुकून से होता है तो बातें बहुत आगे बढ़ा सकता है, जब गुस्से में होता है उसकी समझ में नहीं आता, वो नहीं बोल रहा होता, कोई और बोल रहा होता है, उसके पास लफ्जों का खजाना मुख्तसर होता है। अगर वो चिल्लाने लगे चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, जब बात खत्म हो जाती है तो खुद ब खुद उसका गुस्सा जब थम जाता है वो समझने लगता है कि मैंने क्या किया है, तब तुम हमला करो। इसलिए कि तुम्हारे पास दो चीजें हासिल हो गई, पूरी तवज्जो चाहता हूं, मैं इरफानी जुमलात कह रहा हूं, सीधे साधे अल्फाज में कह रहा हूं। इसलिए कि तुम्हारे पास दो ताकतें आ गई, एक सुनने के बाद पता चल गया इसकी कैपेसिटी कितनी है, और दूसरी बात यह कि जब तक वो बोल रहा था आपको सोचने का मौका भी तो मिल गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम हसन के सामने कोई बड़बड़ाने लगा, शामी बड़बड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, आप वो है, आप वो है, वो है, असाब चाहते थे उसे कत्ल कर दे। इमाम हसन ने कहा रुक जाओ, चिल्लाने दो। 10 मिनट चिल्लाता रहा, जब बात खत्म हो गई इमाम का एक ही जुमला खड़े हुए इंसान को सजदे में गिरा दिया। इमाम ने एक ही जुमला कहा, लगता है तुम मुसाफिर हो, सवारी चाहिए तो हमारे घर आ जाना। बस जब नर्म हो जाती है तबीयत नसीहतें असर करती हैं, जब तबीयत नर्म हो जाती है नसीहत भी असर करती है। इसलिए कुरान ने कहा इदा कातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, जब जाहिल चिल्लाए तो तुम मत चिल्लाओ, तुम कहो सलामुन अलैकुम। जब कह दोगे सलामुन अलैकुम तो हार जाएगा। तो जोश मलियाबादी ने कहा, झुकता है फितना अफ़ो तरहम के सामने, घटता है ताना हुस्ने तकल्लुम के सामने। कभी कभी एक एक लफ्ज जो है वो इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए काफी है, एक एक लफ्ज बदलने के लिए काफी है। पता है हुर कैसे बदल गया, एक लफ्ज इमाम का, एक लफ्ज। मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे या अलग से पढ़ोगे, काफी है। हुर को सोचने पे मजबूर कर दिया, मैं कौन, मेरी नमाज क्या, फर्जंद फातिमा के पीछे तो पढ़ लूं, एक जमात पढ़ ली तो फिर जमात के साथ ही हो गए, फिर जमात के साथ ही। एक लफ्ज कभी कभी इंसान की जिंदगी को बदल देता। हुस्न तकल्लुम झगड़ों को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। घटता है ताना हुस्ने तकल्लुम के सामने, तलवार कांपती है तबस्सुम के सामने, थमता है शोर जंग तरन्नुम के सामने। शोर जंग भी हो, हमला करने के लिए भी कोई आए, तरन्नुम के सामने वो चीजें खत्म हो जाती, तलवार इंसान फेंक देता है। क्या कहा जोश मलियाबादी ने, घटता है ताना हुस्ने तकल्लुम के सामने, तलवार कामती है तबस्सुम के सामने, बदले की रस्म दीन खुदा में हराम है, एहसान एक शरीफ तरीन इंतकाम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बदले की रस्म दीन खुदा में हराम है, एहसान एक शरीफ तरीन इंतकाम है। एहसान करके देखो वो सरेंडर हो जाएगा। वला तुसाइर हद्दक लिन्नास, माफी चाहता हूं, मुझे नतीजा देना है। सारी 8 आयतों का 12 नसीहतें और उसके बाद 7 दलीलें, जितना पढ़ के आया हूं वो सुना के जाऊंगा, आप चाहे इशारा करें या ना करें। जी वला तुसाइर हद्दक, घबराइए नहीं,
वला तुसईर हद्दक लिलनास, अपने चेहरे को मोड़ कर तुम समाज में जिंदगी नहीं गुजार सकते। दूसरी चौथी नसीहत फौरन की अखलाकी नसीहत, वला तमशे फिल अर्दे मरहा, जमीन पर बेटा कभी अकड़ कर न चलना। जमीन सख्त बहुत है, पैर जोर से मारोगे तो टूट जाएगा। गुरूर इंसान का कभी साथ नहीं देता। फिरौन ने कहा मैं बहुत बड़ा खुदा हूं, अल्लाह ने उसे पानी में गर्क किया है, जमीन में नहीं। जितना बड़ा गुरूर था उतनी नीचे गया है। कुरान मजीद कहता है हमने पानी में गर्क किया, पानी के अंदर हमने आग पैदा की ताकि वो जहन्नम में जाए नीचे पस्तियों में। जितना बड़ा गुरूर था उतनी ही पस्तियों में गया है। पहाड़ पर खड़ा होने वाला, ये बात अंग्रेजी किताबों में लिखी हुई है, बस चीजें मैं नकल कर देता हूं। पहाड़ पर खड़ा होने वाला ये सोचता है सारी दुनिया वाले जो नीचे चल रहे सब छोटे हैं, वो ये भूल जाता है जो नीचे खड़े हुए सब उसे छोटा समझते, वो भूल जाता है। कुछ देर के लिए वो क्या समझता है, मैं सारी दुनिया को छोटा देख रहा हूं, सारी दुनिया वाले जो नीचे खड़े हुए सब उसे समझते कितना छोटा है ऊपर चढ़ के। क्या करना चाहिए मुझे, मैं जहां हूं उस एतबार से अपनी शख्सियत को नापूं, ना उससे बड़ा नहीं। वला तमशे फिल अर्द, मिसाल दी है, मिसाल चलने की मिसाल दी है, जिंदगी के हर गोशे में इंकसारी इंसान के काम आती है, इनका इंकसारी इंसान के काम आती है। वला तमशे फिल अर्द मरहा, अकड़ कर जमीन पर मत चलो। क्यों ना चलो, फिर कानून बताया हजरत लुकमान ने, क्यों नहीं चल सकता मैं अकड़ कर जमीन पर, ये शैतान की सिफत है। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अकड़ कर चलने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। किब्रियाई उसे जेब देती है जो खालिक़े कायनात है। मेरे पास है क्या जो मैं फख्र करूं, है क्या? माले इब्ने आदम अव्वलहु नुतफा व आखिरहु जीफा, क्या हो गया इंसान तुझे, तू फख्र कर रहा है किस चीज से पैदा हुआ और कैसे तू मरेगा। मर जाए तेरे बदन को कोई छूले भूले से भी तो गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो जाती, क्या हो जाए तेरा हाल, तू फख्र कर रहा है। ये खुतबा है नहजुल बलागा में मौला कायनात का, जो खुतबा किसी सहाबी ने मौला कायनात से कहा या अली ऐसा खुतबा इरशाद फरमाइए जिसमें कोई अलीफ ना हो, विदाउट अलीफ, ऐसा खुतबा इरशाद फरमाइए। फौरन मौला कायनात ने खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें कोई अलीफ नहीं है, सारे खुतबे में एक भी अलीफ नहीं है। काश ऐसे सवालात करते लोग तो इल्म हम तक पहुंचता। ये सवालात करने लगे मेरे सर में बाल कितने हैं, मौला कायनात ने फरमाया बता भी दूं तो गिन नहीं पाएगा। ऐसे तो सवाल कर जिससे इल्म फैले। मौला ऐसा खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें कोई अलीफ ना हो, मौला कायनात ने इरशाद फरमाया मुतरज्जी मौलाना जफरुल मिल्लत ने उस खुतबे का तर्जुमा किया है बगैर अलीफ के, उर्दू में बगैर अलीफ के तर्जुमा किया है, और तर्जुमा करके बताया 1400 साल के बाद जब अली के गुलामों में यह तवानाई है तो फिर अली की कुल ताकत का क्या हिसाब है। बगैर अलीफ के तर्जुमा किया, बगैर अलीफ के तर्जुमा किया। और उस खुतबे में मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं आए इंसान तेरी हैसियत के लिए बस इतना काफ़ी है, लोगों से कहा गया है कि जब भी नमाज मैयत पढ़ना तो अच्छी गवाही देना, वरना तुझे हुक्म है कि हर नमाज में सजदा है, हर नमाज में रुकू है, हर नमाज में तहारत की शर्त है, हर नमाज में वज़ू की शर्त है, हर नमाज में गुस्ल की शर्त है। ऐ इंसान जब तू मर जाता है तो तेरे लिए परवरदिगार आलम ने नमाज को फ़र्ज किया है, ना रुकू है ना सजदा है, ना तहारत की शर्त है, ना गुस्ल की शर्त है, ना वजू की शर्त है, खड़े खड़े नमाज पढ़ो, खड़े खड़े दफना दो। कहीं मैयत के तस्करे की वजह से सन्नाटा तो नहीं छा गया। क्या है इंसान की हैसियत, खड़े खड़े दफना दो, क्यों? गवाही दो इसके अच्छे होने की ताकि 40 मोमिन गवाही दे दे तो मैं इसे बख्श दूंगा। लेकिन गुरूर इंसान के लिए अच्छा नहीं। वला तमशे फिल अर्द मरहा, अकड़ कर जमीन पर मत चलो, ना आसमान तुम्हारी वजह से नीचे आएगा, ना जमीन तुम्हारी वजह से जगह छोड़ देगी। जितना अकड़ कर चलोगे उतना ही जमीन तुमसे बदला लेगी। زمین پر جتنا پیر ماروگے اتنی زمین تم سے بدلا لے گی. غرور کی وجہ سے وہ کھیلنے والوں کے لیے نہیں ہے بات. ایسا نہ ہوتا تصور پھر میں باسکٹ بال کھیلنا چھوڑ دوں بھی باہر دوڑتا ہوں اچلتا ہوں, ایسا نہیں ہے. غرور کی وجہ, مغرور ہو کر کوئی پیر زمین پر نہ مارے. یہ نوجوان کے ذہن سے ممکن ہے سوال پیدا ہو پھر. ولا تمشی فی الارض مرحا, دو لوگوں نے, علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے دیوان میں, مالک مزارے اور مزدور کے درمیان جھگڑا ہوا. مزدور نے کہا کہ ہم نے کافی کام کیا اس زمین پر, زمین ہماری ہے. مالک نے کہا میں نے زمین کو خریدا ہے, زمین میری ہے. مزدور نے کہا نہیں, جو محنت کرتا ہے زمین اس کے حصے میں آنا چاہیے. مالک نے کہا جو پیسہ دیتا ہے اس کے حصے میں آنا چاہیے. دونوں میں جھگڑا ہوا, کوئی فیصلہ کر نہیں پایا, اس لیے کہ مزدور نے کافی زندگی خرچ کر دی تھی اپنی اس زمین کے لیے. مالک کہتا پیسوں کا نتیجہ زمین ہے, مزدور کہہ رہا ہے محنت کا نتیجہ زمین ہے. آخر میں ایک منصف نے کہا کہ چلو خود زمین سے پوچھتے ہیں تو کس کی ہے. دونوں پہنچے زمین سے سوال کرنے کے لیے, زمین سے پوچھا تو کس کی ہے, مالک کی ہے یا مزدور کی. تو زمین نے پکار کے کہا نہ میں مالک کی ہوں اور نہ میں مزدور کی, یہ دونوں میرے ہیں, یہ دونوں میرے. مریں گے تو میرے ہی آغوش میں آئیں, کہاں جائیں, یہ دونوں میرے ہیں. کیا کروں میں غرور کر کے. حضرت لقمان نے کہا ولا تمشے, بچے کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان. دیکھیے زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ان کے ساری چاہیے, علم چاہیے تو ان کے ساری. توازو, علم کا پہلا زینہ توازو ہے, آخری زینہ جہالت. عرفانی جملہ میں بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, علم کا پہلا زینہ توازو. اگر استاد کے سامنے بیٹھنے کے لیے میں تیار نہ ہوں تو کبھی پڑھ نہیں سکتا. یعنی میں دو زانو ہو جاؤں استاد کے سامنے بیٹھوں تو کچھ علم ملے گا. علم کا پہلا زینہ ہے توازو, آخری زینہ ہے جہالت. یعنی بلندی پر پہنچنے کے بعد کہو میں کچھ نہیں جانتا, وہاں پہنچنے کے بعد کہو گے میں کچھ جانتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ملے, کچھ بھی نہیں ملے. علم کا آخری زینہ ہے جہالت, اقرار کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب اس مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. غرور نہ کرو, لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہو. غرور نہ کرو, کرو محبت کو بڑھاؤ. اللہ غرور کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. پھر آگے بڑھ کر حضرت لقمان نے, آخری آیت ہے گھبرائیے نہیں, حضرت لقمان نے آخری آیت میں فرمایا وَغْدُزْ مِنْ فَقْصُدْ فِي مَشْيِكْ وَغْدُزْ مِنْ سَوْتِكْ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتْ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اے بیٹا راستہ چلنے میں میانہ روی اختیار کرو, اتنا تیز نہ چلو کہ قوم سے آگے نکل جاؤ, اتنا آہستہ بھی مت چلو کہ قوم سے پیچھے ہو جاؤ, قوم کے ساتھ ساتھ چلو. وَقْصُدْ, کیا خوبصورت آئے کریمہ ہے, وَقْصُدْ فی مشیق, اسراف اور کنجوسی کے درمیان والا راستہ اختیار کرو. اسراف اور بخیلی کے درمیان والا راستہ, جسے کہتے ہیں قناعت, کفاء الشعاری, اردو میں کہتے ہیں جتنی چادر اتنے پیر. دوسروں کی زندگیوں کی کاپی کرنے کی کوشش کروں مشکل میں پھنس جاؤں گا, خصوصاً آج کی جو اکنامک حالات چل رہے ہیں. جتنی میری آمدنی اس سے کم خرچ ہو, اس سے تھوڑا کم خرچ ہو, تاکہ جب انسان باہر نکلے تو باہر کی فضا اندر کی فضا میں اتنا تضاد نہ ہو کہ انسان کو زکام ہو جائے. گھر کا ٹیمپریچر ایسا انسان رکھتا ہے نبی کہ اتنے ٹیمپریچر میں ہو کہ جب میں باہر نکلوں فوراً تو اتنی سردی مجھے اٹیک نہ کرے, فوراً اٹیک نہ کرے. انسان ٹیمپریچر کو بیلنس میں رکھتا ہے. اسلام کہتا ہے مال و دولت اور عبادت و ہر چیز کے لیے اعتدال ضروری ہے, نہ افراط نہ تفریط, نہ اسراف نہ کنجوسی, درمیانی راستہ قناعت. وَقْصُدْ فِي مَشْيِكْ, راستہ چلنے میں قناعت اختیار کرو. چلنے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے. جو لوگوں جن لوگوں کے پاس, بس بزرگوں کے لیے اشارہ کر دوں, نوجوان بھی سمجھ جائیں اگر میں سمجھا سکا تو, جن لوگوں کے پاس مقصد نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس صحیح چلنا بھی نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں گھر سے نکل جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں نکلے ہیں. अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बाजार में जाने के बाद जरूरतों को पैदा करते हैं। क्या खरीदना नहीं मालूम, गाड़ी ले निकल गए, बाजार में जाने के बाद ढूंढते हैं कौन सी चीज हमें अच्छी लगती है, ऐसे लोग नुकसान उठाएंगे। जरूरत को पैदा करना नहीं है, जरूरत पर निकलना है। देखिए गौर से सुनिएगा, जिनके पास मकसद नहीं होता, कहां जा रहे हैं आप, पता नहीं, अरे कहीं कहीं निकलेंगे, कहीं से किसी से मुलाकात हो जाएगी, उनका चलना भी सही नहीं होता, उनके पैर सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन जिनकी नीयत मजबूत होती है, जो बच्चा निकलता है मुझे अब जाना है स्कूल, तो उसके चलने में देखिए कितना सिबात कदम पाया जाता, फौरन चलता चला जाता, चलता चला, इसलिए कि उसके पास मकसद मौजूद है। ये वक्सुद फी मशे का मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद मौजूद हो तो तुम्हारा चलना भी अच्छा होता है। नेक इंसान का चलना अच्छा होता है, लेकिन एक शराबी के चलने को देखिएगा, ये गुनाहगार के चलने को देखिएगा, वो डरता रहता है कोई पुलिस ना पकड़ ले, कोई माँ बाप ना देख ले, कोई दोस्त ना देख ले, उसके चलने में सिबात नहीं पाया जाता है। लेकिन जो नमाज पढ़ के कमरे से बाहर निकल रहा है, किसका खौफ है उससे। नेकियां इंसान को शुजात अता करती हैं, बुराइयां इंसान को कमजोर बना देती। बस मैं आ गया अपनी मंजिल की तरफ। आखिरी नसीहत जो हजरत किया लुकमान ने किया अपने बेटे से कि वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज को अपनी जिंदगी में कम करो। ये मेरे लिए नहीं है, अभी इसलिए मैंने इशारा किया था कि आप समझ जाएं। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी जिंदगी में अपनी आवाज को कम करो, मां बाप के सामने, बुजुर्गों के सामने। कोई वजह नहीं है बोलने की, चिल्लाने की, अपनी आवाज को कम करो। क्यों कम करूं मैं अपनी आवाज को? अच्छी मिसाल दिया कुरान ने, क्या करूं आप मुझे कहेंगे, आप बाद में नसीहत करना शुरू करें, मौलाना आप बहुत चिल्लाते हैं, अपनी आवाज को कम करें। लेकिन जब नहीं, मदे अहले बैत में दिल खोल कर बोलना, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज, नापसंदीदा आवाज गधे की आवाज, चिल्लाता है बगैर मकसद के, बगैर मकसद के चिल्लाता है। अगर तुम भी चिल्लाने लगोगे तुम्हारी आवाज वैसे, इसलिए कि अक्सर ज्यादा जो चिल्लाते हैं गलतियां हो जाती हैं। हजरत लुकमान ने नसीहत की, इसमें तफसील में जाना नहीं चाहता मेरे नुकसान में जी। बाप ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटा हर काम करना, शादी ना करना, सब काम करो, शादी ना करो। बेटे ने मुस्कुरा कर कहा, इंशाअल्लाह बाबा आपकी नसीहत मैं अपने बेटे को जरूर सुना दूंगा, जरूर सुना दूंगा उसको। नसीहत है, नसीहत लेना है, लेकिन पता नहीं था बाप को कि किस तरह नसीहत करना है। नसीहत करना उससे सीखे जिसने कुरान मजीद में लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की। तौहीद, कयामत, वालिदैन का एहतराम, नमाज, अम्र बेमारूफ नहीं अज मुनकर, साब्र, लोगों से मेलजोल का तरीका, गुरूर से दूरी, वक्सित फी मशियक, किनाअत, अपनी आवाजों को कम करो। एक और छूट रहा है, नहीं बता सकते हैं कोई? वालिदैन का एहतराम भी हो गया, माद, तौहीद, वालिदैन का एहतराम, तीन, नमाज, अम्र बेमारूफ नहीं अज मुनकर, साब्र, अपने लोगों से मेलजोल का तरीका, किनाअत, गुरूर तकबूर से दूरी, अपनी आवाजों को कम करो, और रास्ता चलने में मियाना रवि इख्तियार, हो सकता है दरमियान भूल गए, आप भी भूल गए, मैं भी भूल गया, चलिए फैसला हो गया। 12 नसीहतें की पूरी तो चाहता मेरे अजीजों, 12 नसीहतें, कवानीन बताए, अगर शुक्र अदा करो तुम्हारे लिए है, शुक्र का फायदा अल्लाह को नहीं है। शिर्क इख्तियार करोगे बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। मां बाप का एहतराम नहीं करोगे वो इलैया मसीर, लौट कर तुम्हें आना है, हिसाब देना है। कयामत का एतकाद रखो, इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, एक एक अमल को परवरदिगार तुम्हारे लाएगा, तुम्हारे सामने रखेगा, तुम खुद पूछने लगोगे क्या मैंने ये नेकी की थी। इंसान भुलक्कड़ है, भूल जाता है। हदीसों में है, नेकियां करो भूल जाओ, अपने गुनाहों को याद रखो। हमने उल्टा कर दिया, लोगों की बुराइयों को याद रखा, अपनी बुराइयों को हम भूल जाए। लोगों की नेकियों को याद रखो, अपने नेकियों को भुला दो। लोगों की बुराइयों को भुला दो, अपनी बुराइयों को याद रखो. क्यों? अपनी बुराइयों को याद रखोगे तो तौबा की तौफीक होगी, उनकी बुराइयों को भुला दोगे हुस्न जन पैदा होगा, एतमाद पैदा होगा. इन्नल्लाह लतीफुन खबीर. गुरूर ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल फक्तालिन कफूर. बुलंद आवाज में बात ना करो, इन्ना अनकरल अस्वाते लसौतुल हमीर. हर अमल का हिसाब होगा, हर अमल का हिसाब होगा. कितना अच्छा है कि हम अपने हर अमल को उसके साथ जोड़ दें जो अमल को आबरू अता करता है. हर अमल को आबरू अता करने वाली शख्सियत का नाम है हुसैन. इस आजादारी, इस नाम से छोटी छोटी चीजें भी मंसूब हो गईं, मुअतबर हो गईं. आंख से निकलने वाला आंसू बाजार में इसकी कोई कीमत नहीं है. चूंकि हुसैन के नाम से मंसूब हो गया, ये आंसू बन गया कीमती. क्या कीमत है आंसू की? लेकिन हुसैन के नाम से मंसूब है. किसी बुजुर्ग ने कहा, ये एक अश्क के अजा के मुकाबले में जन्नत मिल जाती है. क्या जन्नत इतनी सस्ती हो गई कि एक अश्क के अजा के मुकाबले मिल जाए? तो उस बुजुर्ग ने कहा, जन्नत सस्ती नहीं है, अश्क महंगा है. अश्क महंगा है. हमने कब कहा कि जन्नत सस्ती है? इसलिए कि दिल में जब मोहब्बत हुसैन की हरारत जोश में आती है, पैदा होती है, मोहब्बत में मौज पैदा होते हैं, तब जाकर इंसान की रगों से वो आंसू बहता हुआ आंख से निकल पड़ता है. एक आंसू दिल के मोहब्बत की निशानी है. ऐ हुसैन, तुझ पर हमारा सलाम. तूने आज़ादारी का की नेमत हम तक पहुंचाकर हमारी जिंदगियों को सुरखरू कर दिया. फर्श अज़ा को यूनिवर्सिटियों में बदल दिया, मदरसे में बदल दिया, मकतब में बदल दिया. नाम हुसैन पे हमने बुलाया, कुरान की आयतें सुनाई, तौहीद का पैगाम सुनाया, मात का पैगाम सुनाया, वालदैन का एहतराम करना सिखाया. क्यों? सारी चीज़ें हुसैन ने यूं ही हासिल नहीं की हैं, अपनी कुर्बानियों के ज़रिए से हासिल की. जब हम फर्श अज़ा बिछाते, उन्होंने ख़ुद कहा कि फ़र्श अज़ा बिछाओ. जब हम फर्श अज़ा बिछाते हैं, सबसे पहले वो ख़ुद चले आते हैं. मालूम है आपको, फ़र्श अज़ा बिछाने का हुक्म उन्होंने दिया कि बिछाओ, याद करो. जब हम फर्श अज़ा बिछाते हैं, वो खुद सबसे पहले चले आते हैं और फर्श अज़ा पर बैठ जाते हैं. गोया हम उनके मेहमान नहीं हैं, वो हमारे मेहमान हैं, या वो हमारे, या हम उनके मेहमान हैं, मुझे नहीं पता है. अक्सर उलमा ये कहते हैं कि हम जब फर्श अज़ा बिछाते हैं तो वो हमारे मेहमान रहते हैं. लेकिन एक बुजुर्ग आरिफ ने कहा है कि इससे मंजिल कुछ और आगे होना चाहिए. हम हर जो सोवी सेंटर हम बनाते हैं, अजाखाना बनाते हैं, वहां लिखते हैं इस मिल्क, इस सेंटर, इस अजाखाने का मालिक होगा, हकीकी मालिक है हमारे वक्त का इमाम. नतीजा जो आखिर में होगा, मतलब कम्युनिटी का कुछ हाल हो, कम्युनिटी यहां से चले जाए छोड़कर, इस घर का और इस सेंटर का मालिक कौन? वक्त का इमाम हर अजाखाने और हर मस्जिद का मालिक होता है. हम नतीजा लिखते हैं कि इस अजाखाने और सेंटर का हकीकी मालिक कौन है? वक्त का इमाम. जब उसके घर हम आए हैं तो वो मेज़बान है, हम मेहमान हैं. लेकिन कितना बड़ा करम है उनका, घर उनका, हमको मेज़बान बनाए हुए हैं और वो मेहमान बन के आ रहे हैं. अल्लाहु अकबर. ऐ हुसैन, तुझ पर सलाम. मुहर्रम का आगाज़ हो चुका, रस्मी तौर से आज की शब से आगाज़ हो जाएगा. इसलिए कि हुसैन का छोटा सा काफिला आज करबला के दश्त में पहुंच गया. वो कर सरजमीन, जिस सरजमीन की जियारत अंबिया ने की है, औलिया ने की है, और मुसीबत हुसैन को बयान किया है, वो सारे फजीलतों को लेकर हुसैन इस सरजमीन पर पहुंच गए. इमाम का घोड़ा आगे बढ़ता नहीं है. इमाम ने पूछा, भैया अब्बास, पूछो इस सरजमीन का नाम क्या है. जब बुलाया गया बनी असद के कबीले वालों को इस सरजमीन का नाम पूछने के लिए, किसी ने कहा गादरिया, किसी ने कहा शत्तुल फुरात. जब सारे नाम बयान हो चुके तो इमाम ने पूछा, क्या इसका एक और नाम भी है? तो कहने वाले ने कहा, किसे इस सरजमीन को करबुन व बला भी कहते हैं. इमाम ने कहा, भैया यही हमारा मकाम है. اسی مقام پر قائم نصب کر دو. قافلہ اس سرزمین پر پہنچ گیا جس سرزمین پر حسین معراج کی منزلوں کو طے کرتے. جو اس سرزمین پر یہ چھوٹا سا قافلہ اترا, ایک ہوا چلنے لگی, زینب کے سر سے چادر سرکنے لگی. تو ایک مرتبہ زینب نے پکار کر کہا, بھیا اس سرزمین سے کہیں دور چلے جا, جب سے اس سرزمین پر ہم نے قدم رکھا ہے بے چینی بڑھ چکی ہے. جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو پشت خیمہ سے کسی بیوی کی رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے, بھیا چلو کہیں دوسری جگہ چلے جائیں. امام نے فرمایا, بہن زینب وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے, ہماری تمہاری ماں فاطمہ. یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کی زیارت انبیاء نے کی. حسین کا چھوٹا سا قافلہ اس سرزمین پر پہنچ گیا. اے کرب زمین کربلا, تو صد افتخار ہے, فخر کے قابل ہے حسین جیسا امام اس سرزمین پر قدم رکھا ہے. بیبیاں ساتھ ہیں. امام نے بنی اسد کے قبیلے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اس زمین کو خریدا. خریدنے کے بعد امام نے فرمایا, مردوں کو دیکھ کر بنی حضرت کے فرمایا, دیکھو عصر عاشور ہمیں ظالم شہید کر دیں گے, ہمارے لاشیں دشت کربلا میں بکھرے پڑے ہوں گے, کوئی ہمیں دفنانے والا نہیں ہوگا. اس خواہش یہ ہے کہ میں زمین تمہیں ہبا کر دیتا ہوں, اگر وقت ملے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. جب امام کی نگاہ بنی حضرت کی عورتوں پر پڑی تو امام نے کہا, مجھے معلوم ہے مرد ڈر جائیں گے, تم پانی کے بہانے آنا, ہمارے لاشوں پر کچھ مٹی ڈال کر چلی جانا. جب امام نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے قریب کھڑے ہیں, بچوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا, اے مظلوم کربلا تو کتنا غریب اے مظلوم کربلا تو کتنا غریب ہے. امام نے بچوں کو دیکھ کر کہا, بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہم نے نہ دفنائے تم کھیلتے ہوئے آنا, ہمارے لاشوں پر خاک ڈال کر چلے جانا. میں کہوں گا مولا اللہ رے امتحان عصر عاشور ہے, دشمن اپنے لاشیں اٹھا کر لے گئے, فرزند فاطمہ کا لاشا دشت کربلا میں بے گوروں قبر پڑا رہا. ارے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب, بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفنیاں.